आज का ग्रुप नंबर है 2। टाइटल है सदा उमंग उत्साह में रहे, अपने चेहरे और चलन द्वारा दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाओ। तो बाप दादा कहते हैं, सभी अपने को सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाली आत्माएं अनुभव करते हो। सदा उमंग उत्साह बढ़ता रहता है या कभी कम होता है? कभी बढ़ता है, क्योंकि जितना उमंग उत्साह होगा उतना औरों को भी उमंग उत्साह में उड़ाएंगे। सिर्फ स्वयं नहीं उड़ने वाले हो लेकिन औरों को भी उड़ाने वाले हो। तो उमंग उत्साह ये उड़ने के पंख हैं। अगर पंख मजबूत होते हैं तो तीव्र गति से उड़ सकते हैं। अगर पंख कमजोर होंगे और तीव्र गति से उड़ने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं उड़ सकेंगे, बार बार नीचे आएंगे। तो उमंग उत्साह के पंख सदा मजबूत हो, कभी कमजोर कभी मजबूत नहीं, सदा मजबूत, क्योंकि अनेक आत्माओं को उड़ाने की जिम्मेवार आत्माएं हो, विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी ली है ना, तो सदा इतनी बड़ी जिम्मेवारी स्मृति में रहे। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तब जो भी काम करेंगे तो तीव्र गति से करेंगे, जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले होते हैं। तो हर एक के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सभी ने यह जिम्मेवारी का संकल्प लिया है या सोचते हो कि यह बड़ों का काम है, हम तो छोटे हैं, ऐसे तो नहीं, यह तो पुराने जाने, हम तो नए हैं, ऐसे तो नहीं। चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, लेकिन ब्राह्मण बनना अर्थात जिम्मेवारी लेना। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन है तो बीके या और कुछ है, तो बीके अर्थात ब्राह्मण बनना और ब्राह्मणों की जिम्मेवारी ही है ही। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, हमेशा अपने को उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि यहाँ पे बाबा ये याद दिला रहे हैं कि हम खुद तो उड़ने के लिए मतलब खुद की जिम्मेवारी तो है ही, लेकिन अनेक आत्माओं को उड़ाने की भी जिम्मेवारी है। जैसे कि समझो हमें अगर भविष्य में राज्याधिकारी बन रहा है तो हमारे साथ अनेक आत्माएं होंगी। जैसे कि लौकिक में भी प्लेन होता है, लोग उसमें आके बैठते हैं, तो पायलट की जिम्मेवारी होती है खुद भी उड़ना और औरों को भी उड़ाना और एक डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। तो वैसे ही ये उमंग उत्साह से हमें औरों को भी उड़ाना है। तो ये पंख मजबूत है, उसमें मतलब जैसे वो हद का जो प्लेन होता है उसमें भी बहुत फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कहते हैं एक प्लेन एक उड़ान में जितना फ्यूल खर्च करता है उतना एक पूरा मोहल्ला एक साल तक फ्यूल खर्च कर सकता है। तो इतने सारे लोगों की जिम्मेवारी है, तो हमें भी बाबा से उतनी पावर लेके उतना बेहद में मतलब पावरफुल बनकर ये उमंग उत्साह और खुशी का खजाना खुद में भरना होगा। तो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ हम तो खुद पर खुद को खुद के लिए जिम्मेवार तो है ही, लेकिन अनेक आत्माओं के लिए उड़ने के लिए जिम्मेवार है। विश्व कल्याण करने की जिम्मेवारी ली है ना। अभी जैसे आधा कल्प से हम पर संस्कार पढ़ते आ रहे हैं कि हम पे अगर कोई मतलब कोई जिम्मेवारी दी जाए और हमसे काम ना हो तो हम दूसरों पे उंगली दिखाते हैं। एक तो वैसा ही अभी भी संस्कार पड़ा है, ये बाबा का कहना है। तो बीके बने हो या फिर अभी भी वही बने हो या फिर और कुछ बने हो, ये भी बाबा पूछ रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी की स्मृति कभी भी आपको अलबेला नहीं बनाएगी। लौकिक कार्य में भी जब कोई जिम्मेवारी बढ़ती है तो आलस्य और अलबेलापन आता है या चला जाता है। अगर कोई भी कहेगा ना कि चलो थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ, क्या करना है, तो बैठ सकेंगे? तो जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन खत्म कर देती है। तो चेक करो कि कभी भी आलस्य अलबेलापन तो नहीं आता था, चल तो रहे हैं, हो जाएगा, यह है अलबेलापन। आज नहीं तो कल हो जाएगा, यह आलस्य है। कल नहीं आज भी नहीं अब, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। अगर अधूरा पुरुषार्थ रह गया तो कभी कहाँ पहुंचेंगे, सूर्यवंश में या चंद्रवंश में? आधा पुरुषार्थ रहा तो प्रारब्ध भी आधी मिलेगी ना, तो चंद्रवंश में जाना है नहीं जाना है? कोई एक भी नहीं जाएगा, माताएं भी सभी सूर्यवंशी बनेंगी। अच्छा, क्योंकि जब पाना है तो पूरा ही पाए ना, आधा पाना तो समझदारी नहीं है। समझदार सदा ही स्वयं को पूरा अधिकारी बनाएगा, क्योंकि बच्चा अर्थात अधिकारी। तो ऐसी अधिकारी आत्माएं हो या कभी कभी थक भी जाते हो, अधिकार लेते लेते थक तो नहीं जाते? कभी मन में थक जाते हैं, कहाँ तक करेंगे, अथक है, थकने वाले नहीं है। थकना काम चंद्रवंशियों का है और अथक रहना ये सूर्यवंशियों की निशानी है। तो बाबा यहाँ पे फिर से अटेंशन दिलवा रहा है कि जो जिम्मेवारी है उस हिसाब से आप में अलबेलापन नहीं आना चाहिए। जिम्मेवारी है तो अटेंशन रहे और सूर्यवंश में पहुंचना है। जैसे हम अभी रिटर्न जर्नी पर है, तमो प्रधान जब बने हैं, सत्व प्रधान से तमो प्रधान की स्टेज पर आए हैं, तमो प्रधान से तमो स्टेज, रजो, रजो से फिर सतो, और सतो से फिर सतो प्रधान बनना है। तो ये उल्टा रिटर्न जर्नी पे जाते जाते अगर हम कहीं बीच पे रुक जाते हैं तो चंद्रवंश में तो नहीं जाना है, ये बाबा पूछ रहे हैं। लास्ट स्टेप तो जाना है तो अथक बनना पड़ेगा। वैसे भी मतलब हद की दुनिया में सबसे लंबी फ्लाइट होती है सिडनी से न्यूयॉर्क तक, तो उसमें भी वो फ्यूल भरते हैं वैसे ही। तो हमें भी संगम युग में अभी ये बेहद नॉन स्टॉप जर्नी है। अगर बीच में रुक जाएंगे तो जहाँ पे रुकेंगे वही स्टेज लास्ट स्टेज होगी।
ओम शांति हो।
हाँ, ओम शांति हो जाएगा। क्योंकि ये लिमिटेड समय है वैसे तो संगम का, तो उस हिसाब से बाबा कहते हैं अगर तुम्हें सूर्यवंशी बनना है तो अथक बने रहो, फिर पुरुषार्थ में अलबेलापन नहीं आना चाहिए। सूर्यवंशी की निशानी है सदा तक बने रहना। तो थकना काम चंद्रवंशियों का है और अथक,
अच्छा बोला ठाकुर मॉडल,
थकना काम चंद्रवंशियों का है और अथक रहना ये सूर्यवंशी की निशानी है। क्या भी हो जाए लेकिन सदा अथक, जिसको सदा जिसको उमंग उत्साह होता है वह कभी थकता नहीं। उमंग कम होता होगा तो थकावट जरूर आएगी। उमंग उत्साह वाले सदैव अपने चेहरे से और उनको भी उमंग दिलाते रहेंगे। एक है चेहरा, दूसरा है चलन। तो अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह में बढ़ाते रहो। ऐसी चलन हो जो कोई भी देखे तो सोचे कि ये उमंग उत्साह में सदा कैसे रहता है। जैसे कोई बहुत खुश रहता है तो उसको देख करके दूसरे भी खुश हो जाते हैं ना। कोई रहने वाला है, रोने वाले होते हैं तो रोने वाले को देखकर दूसरे क्या करेंगे? अगर रोएंगे नहीं तो मुस्कुराएंगे भी नहीं। तो आपकी चलन और चेहरा ऐसे है, फलक से जवाब दो कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा? कल कल के आप ही हैं और सदा ही रहेंगे, ये पक्का निश्चय है ना? तो हम ही थे और हम ही रहेंगे, पक्का है ना? जब सीजन ही उड़ने की है तो उड़ने के समय पर गिरना तो अच्छा नहीं होता है ना? तो हम उड़ने वाले हैं और उड़ाने वाले भी। कभी भी कोई भी बात आए तो याद करो कि हम कौन हैं, हमारी जिम्मेवारी है क्या, हमारी क्या जिम्मेवारी है। अभी देखेंगे कि स्वस्थिति व सेवा में नंबर आगे कौन जाता है। स्वस्थिति में भी नंबर वन लेना है तो सेवा में भी नंबर वन लेना है। अच्छा, तो बाप दादा यहाँ पे कहते हैं जैसे उमंग उत्साह में अधक होना है और उनको भी उड़ाना है तो चेहरे से और चलन से। ये बस उमंग उत्साह मन में रखा और चेहरे और चलन में नहीं दिखाया तो बाकी आत्माएं तो भाग ही जाएंगे। जैसे तो वो बोलेंगे ये तो बस बड़े बड़े बातें करते हैं, खुद तो कुछ करते ही नहीं। तो ऐसे औरों को भी अपने चेहरे और चलन से आगे बढ़ाते रहना। और बस यही नहीं कि मतलब उमंग उत्साह, खुश भी होना है जो संगम का सबसे बड़ा खजाना बाबा ने दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आपको सदा खुश रहना है तो वो भी खुशी अपने चेहरे और चलन से दिखाई दे। तो ये निश्चय भी होना चाहिए हम नहीं खुश होंगे, हम उत्साह में नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा? कल कल के बने हैं तो अब अभी भी बनेंगे, उड़ने वाले हैं और उड़ाने वाले भी। तो हमारी जिम्मेवारी क्या है और हम कौन है ये भी याद रहे तो सदा उमंग उत्साह बना रहेगा। वैसे आगे की 31/12/95 की मुरली है, उसमें बाप दादा ने ये अलबेलेपन के रिजल्ट बोला है। वहां पे बाप दादा बोलते हैं कि बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा तो 50% बच्चे अलबेलेपन में चले गए हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को देखते रहते हैं, तो उसमें भी मेजॉरिटी पुराने लोग हैं, यही देखते रहते हैं, करेंगे देखेंगे, अगर यही करते रहे तो स्वराज अधिकारी कब बनेंगे? और ये मतलब आलस्य का भी आज बाबा ने बोला है। तो 69 की मुरली में भी बाबा ने यही बोला है कि सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य, आलस्य में ही बने रहेंगे तो क्या करेंगे। उसके लिए बाबा ने उपाय भी वहां पे बोला है कि अगर आप शक्ति रूप बने रहो तो ये आलस्य नहीं आएगा। और यहाँ पे आज के मुरली में 3 पॉइंट बनेंगे, फिर सदा उमंग उत्साह में बने रहो, दूसरा अथक बने रहो, और तीसरा जिम्मेवार आत्मा हो, ये बाबा ने बोला है। अगर ये भूलते हैं तो फिर अलबेलापन आलस्य आ जाता है। और आलस्य और अलबेलेपन पे सबसे मतलब सिंपल उपाय बाबा ने भी कई मुरलियों में बोला है कि श्रीमद की लगान खींचो। श्रीमद की अगर लगाम मतलब घोड़े को जैसे लगाम होता है ना, वो खींचेंगे तो श्रीमद पे सदा चलते रहेंगे तो आलस्य और अलबेलेपन नहीं आएगा। और खुशी का खजाना और हम कौन है, हमें क्या बनना है, ये भी याद रखेंगे तो भी आलस्य और अलबेलेपन कभी नहीं आएगा।
कैसे खुशी में ममता में कैसे रहते हैं ये बताओ।
अच्छा वैसे तो मतलब
कोई बात नहीं, बोलो आप। हाँ कोई बात नहीं, परिचय भी बताओ, बोल बताओ सब बताओ मालिक वाले।
तो वैसे मेरा लौकिक नाम है हितेश। मैं भी मतलब सेवा स्थान मतलब जहाँ पे बाबा ने रखा है वो दामखेड़ है, कमलेश के गांव से ही हूँ। वहाँ पे मैंने एमकॉम कंप्लीट किया है लौकिक में, और हद की भी और बेहद की दोनों पढ़ाई चल रही है। तो बाबा बचपन से मतलब बचपन से ज्ञान दिया है बाबा ने, एक ही चीज मतलब याद दिलाई है कि सदा उससे कनेक्शन बना रहे। बाकी तो कनेक्शन है, लेकिन जब बाबा से कनेक्शन रहता है तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे खुश किस लिए होना है। बाबा से कनेक्शन यही मेरे लिए खुशी है। तो जो बाबा बोलता है हर रोज मतलब बहुत सारी बार मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है, हर रोज बाबा मतलब मेरे लिए खुद मुरली लिखता है कि चलो बच्चे ये तुम्हारे लिए सोल्यूशन है। तो बाबा इतना ख्याल रखता है मेरा हर एक चीज में, तो यही सब खुशी का कारण बन गए थे। बस एक बाबा ही खुशी का कारण, एक बाबा में और ज्ञान में मतलब वैसे ही 15 साल हो गए हैं।
अच्छा
5th standard से हूँ वैसे तो, लेकिन ऑफिशियल डेट मतलब उस हिसाब से काउंट करें तो 12 साल हो गए। लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद पूरा परिवार ज्ञान में आ गया, तब से चल गया।
अभी क्या करते हैं आप?
अभी मतलब फैमिली बिजनेस है वैसे तो, तो वो भी कर रहे हैं, और अभी डॉक्टरेट के लिए आगे पढ़ाई करना। व्यवहार में मतलब बिजनेस है तो बहुत लोगों को मतलब बहुत लोगों से कनेक्शन बनता है। हर एक आत्मा अपने अपने मतलब उसके स्वभाव संस्कार के हिसाब से आ जाती है, हर एक की अनेक अनेक उम्मीद होती है। लेकिन जितना मेरे पास स्टॉक है मतलब जैसे कि बिजनेस में होता है उसको कुछ चीज चाहिए होती है तो वो मुझे पहले से काम करके रखना पड़ता है कि अभी ये कस्टमर को लगना है तो उस हिसाब से मुझे वो रेडी रखना है। उसी तरह बाबा ने भी मतलब ये बाबा हर बार बोलता है ना बेहद की पढ़ाई है, तो मैं ये समझता हूँ कि बेहद की पढ़ाई बस इसी चीज में नहीं है, ये बेहद का मैनेजमेंट भी है, बेहद का कॉमर्स भी है। अभी इस मुरली में बाबा ने मतलब वैसे तो ये सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए बोला है, लेकिन ये स्पेशली राजाओं के लिए भी बोला है जिनको भविष्य में स्वराज अधिकारी बनना है। तो बाबा दोनों तरफ मुझे याद दिलाता है, चलो बच्चे ये भी स्टॉक तुम दुकान पर रख रहे हो तो अपने वो खुशी का बाकी खजानों का भी वैसे ही स्टॉक रखा करो। आपके पास जो भी मतलब भक्तात्माएं आएंगी, जो भी आएंगे बाकी लोग आएंगे तो वो कुछ भी मांग सकते हैं तुम्हारे पास, तो वो स्टॉक में तुम्हारे पास हमेशा रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं हाँ भगवान के पास पड़ा है बाद में आकर ले लो फिर थोड़ी देर में, तो वो लोग तो रुकने वाले नहीं है वहां तक। तो वैसे पहले से सब कुछ रेडी बन के रखना रहना एवरी। झूठ बोलना पड़ता है लेकिन ज्यादातर के मतलब हमारा बिजनेस एग्रीकल्चर बिजनेस है जो कि मतलब सप्लाई और डिमांड पे बेस होता है। जो जो एक्चुअल पोजीशन होती है वही बताना पड़ता है। अगर समझो हम अभी जैसे पाइप का सीजन चल रहा है तो उस टाइम पे क्या अगर होता है एक महीना या डेढ़ महीने के बाद डिलीवरी होती है। अगर हम कस्टमर का अभी झूठ बोल देंगे कि 8-10 दिन में आ जाएगा तो वो हमारे सिर पर आके बैठ जाएंगे फिर तो। यहाँ पे झूठ बोलने का काम भी नहीं बाबा ने रखा पहले से। हाँ नहीं लेकिन झूठ भी बोलना नहीं पड़ता। एक्चुअल में डेट जो जो भी है वो बोलना पड़ता है वहां पर। तो यहाँ पे भी झूठ बोलने का कुछ काम नहीं। मतलब हमसे ज्यादा शायद है तो वो कस्टमर्स होते हैं। हमको जो चीज नहीं पता होती है वो 12 दुकान घूम जहां धाम के आ जाते हैं फिर बोलते हैं आपके पास ये चीज है या नहीं, आप उस कसौटी पे हो या नहीं।
बाबा ने कहा कि अगर उमंग उत्साह है तो अथक रहेंगे एक, दूसरा अगर अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे तो आलस्य और अकेलापन नहीं है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि जितना हमारे अंदर उमंग है उत्साह है उतना ही हम अथक रहेंगे। इस ज्ञान मार्ग में जो तीव्र पुरुषार्थी है चलते चलते कई बार उमंग कम हो जाता है। कई बार ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। कभी किसी ने प्रश्न पूछा था कि निरंतर उमंग उत्साह बना रहे पुरुषार्थ का उसके लिए क्या किया जाए। निरंतर उत्साह बना रहे मंजू में क्या कर सकते हैं कि उत्साह कभी कम ही ना हो। जो उत्साह ज्ञान में जब आए थे शुरुआत के दिनों में वो था, तो अभी पंख को क्या हो गया, किसने पंख को नोच लिए। बाबा ने कहा ना पंख मजबूत हो, जितने पंख मजबूत होंगे उतना हम उड़ान भर सकेंगे। और हमारी उड़ान न्यूयॉर्क सिडनी से भी कई दूर है हमारी सबसे लंबी फ्लाइट। और हमारी जो उड़ान है ये जो परवाज है ये सबसे ऊंची उड़ान है, सबसे ऊंची उड़ान। इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ये बहुत की ये बेहद की। तो हमारी जो उड़ान है उसके लिए एक दो दिन की नहीं है, लंबी उड़ान है, बहुत लंबी उड़ान। और उसमें निरंतर उमंग उत्साह बना रहे उसके लिए क्या करें, ये तो एक चिंतन का विषय ये है। बाबा ने कहा उमंग उत्साह है तो अथक रहेंगे, दूसरा कहा अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे। अपनी जिम्मेवारी क्या है, विश्व कल्याणकारी है, या अभी सुशील भाई ने शायद वो लगाया है ना जागो योगी, उसमें जिम्मेवारी है सारी, क्या क्या करना है, भक्तों के लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, बहुत सारा है। जागो योगी जागो। तो वो जिम्मेवारी है हमारी, वो सारी याद रहे तो फिर हम आलस्य और अलबेलापन, कोई कहे भी कि कल बाद में कर लेंगे कल कर लेंगे, नहीं अब, क्योंकि जिम्मेवारी है। तो जब जिम्मेवारी है तब आलस अलबेलापन, आलस को छठा विकार कहा हुआ है, पांचों विकारों से छूट गए परंतु आलस है, काम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं मोह नहीं अहंकार नहीं, पर कुछ कर ही नहीं रहे बैठे है बस, इच्छा ही नहीं कुछ करने की। हाँ तो फायदा होना चाहिए उसके लिए क्या करे। तो दो बातें, एक तो उमंग उत्साह सदा बरकरार रहे ताकि हम अथक रहे, दूसरा जिम्मेवारी सदा याद रहे ताकि आलस अलबेलापन ना आए। अभी प्रश्न है कि सदा ही उमंग उत्साह बना रहे किस लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए, वो सब कुछ करने के लिए जो कि बाबा ने कहा है, उसके लिए क्या किया जाए। डाउन होता है पहले तो दूसरों को देखना बंद करना, देखना उनको है जो हमको लगता है हमसे आगे है, जो आगे है जो आगे उड़ान भर रहे हैं उनको देखना है। एक तो वो उन सबकी वो विशेषताएं देखना है जो हम में नहीं है। जब हम किसी की कोई विशेषता देखते हैं तो हमको लगता है कि हमें भी रहनी चाहिए, हमें भी वो चीज होनी चाहिए। जब हम किसी को देखें कि किसी के मोह ही नहीं है किसी में, तो हमें वो एक आदर्श है हमारे लिए। तो उन आत्माओं को देखना है कि जिनमें हमसे अधिक विशेषता है, एक तो ये कमजोरियों को नहीं देखना है, दूसरों की कमजोरी की देखने का आंख की आंख क्या करो, बंद कर दो, देखना ही नहीं है तुमको। अगली संडे की मुरली जो बता रहे थे भाई, मधुबन निवासियों से बाप दादा मुलाकात, बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद का वैराग, बेहद का त्याग, बेहद का सुनना, बेहद का बोलना, सब कुछ बेहद का हो मधुबन निवासियों का। फादर ऑफ मधुबन, ब्रह्मा को मधुबन का बाप है वो, तो उसका जैसा था वैसा हमारा रहे। हम अलादीन के चिराग है संसार के लिए, जो चाहिए वो दे सकते हैं संसार को, जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति, जिसको जीवन मुक्ति चाहिए जिसको उसको जीवन मुक्ति, ऐसे हम है। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रहेगा तो आधा सरबेलापन नहीं आएगा। अभी और उमंग उत्साह के लिए क्या करें, एक तो दूसरों की विशेषता देखना, दूसरों की कमजोरी नहीं देखना, दूसरा हम हिल जाएंगे तो सब हिल जाएंगे, हम में हलचल तो सब में हलचल। संग, किसका संग कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? तीव्र पुरुषार्थियों का संग हो, क्योंकि माया बहुरूपिणी है तो हमको पता ही नहीं चलता। अगर किसी ऐसी आत्मा का संग कर लिया कि जिसमें उमंग पुरुषार्थ के प्रति वो सजग नहीं है, उसे मुरली से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, केवल सुनना तक ही पर्याप्त सीमित है। हमें उन आत्माओं के संपर्क में रहना है, उन आत्माओं से दोस्ती बढ़ानी है कि जो पुरुषार्थी है, जो सजग है, जागृत है अंदर, जागरण की अवस्था में। कल बाबा ने कहा ना, जागो, जाग सजनिया, जाग, जागने को कहा है कल बाबा ने, किसको जाग, हे योगी जाग, क्या क्या करना है तुम्हें। तो ऐसी आत्माएं जो जागृत अवस्था में है, जिनको पता है समय कौन सा चल रहा है, जैसे आज की मुरली में भी है कि समय तमो, दुनिया तमो प्रधान बनती जा रही है और तुम्हारा संगम जो पूरा हो रहा है, कितना सुंदर महावाक्य है। दुनिया तमो प्रधानता की ओर जा रही है, तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है और तुम्हारा संगम युग पूरा हो रहा है। 69 से पहले का हुआ है, तुम्हारा संगम युग पूरा हो रहा है। तो समय की पहचान की, समय बहुत कम है, बहुत कम है, हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट एडमिशन ली है। स्कूल कब से चालू हो गई और हमारी एडमिशन कितनी लेट है और एग्जाम सबका एक साथ है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। जून जनवरी में एग्जाम स्कूल चालू हो गई, हमारी एडमिशन इधर जुलाई में हो रही है और वो जनवरी वाले स्टूडेंट बैठे हैं और हम देख रहे हैं वो सो रहे हैं, हम सोचते हैं कि वो सो रहे तो हम भी सो जा रहे हैं, पर उन्होंने स्टडी कर ली है 6 महीने, उनकी पूरी प्रिपरेशन है, इसके लिए सो रहे हैं अभी आराम से। वो पास हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, इसके लिए हम बहुत लेट आए हैं। जब दादी जानकी, उनकी जब उम्र थी 21 ईयर्स, 21 साल की, तब जब वो आई तो उसको लगा कि मैं बहुत लेट हो गई हूं तो बाबा को पूछा कि बाबा मैं इतना लेट हो गई हूं, क्या करूं, कैसे आगे जाऊं? तो बाबा ने कहा मुरली 12 बार पढ़ो। तो उसने पूछा दादी ने कि अगर मैं 24 बार पढ़ू तो? तो तब लगा कि लेट हो गए। आते ही सबसे पहला संकल्प था कि लेट हो गए, तो हम कितना लेट हो गए। तो ये समय की, समय का स्मरण कि बहुत लेट हो गया और समय बहुत ही थोड़ा बचा है, इस थोड़े समय में बहुत तीव्र गति से जाना है आगे, तो दिन रात लग जाना पड़ेगा। तो समय की पहचान अगर है तो उमंग उत्साह रहेगा। और
ईश्वरीय नशा,
ईश्वरीय नशा कैसे? स्वयं अपने आप को, अपने अंदर स्वयं, क्योंकि नशा दूसरा कोई चढ़ाने वाला नहीं है, कितनी भी क्लासेस सुनो, कितनी भी किया, वो तो एक माध्यम है, परंतु स्वयं स्वयं को नशा चढ़ाना पड़ेगा, स्वयं को पीना पड़ेगा। केवल हम वो जो प्याला है उसमें जो रखा है उसकी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा, मुरली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे महावाक्य है, बाबा कितना अच्छा बोलता है, ये कितना अच्छा है, वो क्लास कितना अच्छा है, ये क्लास कितना अच्छा है, वो लिखा हुआ कितना अच्छा है, किसने लिखा, ये सबसे नहीं होगा, उसको पीना होगा। जब तक हम नहीं पिएंगे, जब तक हम उसमें डूबेंगे, हम सागर के पास आए हैं, सागर को देखने के लिए आए हैं क्या, पीने के लिए आए हैं, तो सागर को पी लेना है। तो स्वयं को स्वयं नशा चढ़ाना, उसके लिए भी क्या, अपने अनुभव को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आश्चर्यपन की अवस्था को बढ़ाना पड़ेगा, अपने योग के चार्ट को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ज्ञान के चिंतन को बढ़ाना पड़ेगा। जो हमारी ग्रहण शक्ति है अभी इस समय मिली थी, हम जो एक बार पढ़ते हैं और उसको कितना ग्रहण करते हैं, इसके लिए ये जो ग्रहण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने अध्ययन को भी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जगदीश्वर की, बहुत सारी किताबें हैं, वो सारी किताबों का एक एक किताब लो और एक एक किताब का अध्ययन चालू करो, डेली वन चैप्टर, एक एक चैप्टर, कोई भी ज्ञान निधि किताब है, कोई भी एक किताब लो और उसका अध्ययन चालू करो। या फिर जो मम्मा की किताब है 24 जून आने से पहले तक, वो किताब हो जानी चाहिए सबकी। मैं सोच रहा था कि यहीं पर हम चालू करेंगे 24 मई से, हर एक एक चैप्टर बिना देखे फिर उसको जो जो अनुभव लिखे हैं वहां पर वो बताएं, पढ़ के आए और फिर बताएं। तो इस तरह से हमारी बुद्धि निरंतर ज्ञान चिंतन में है तो उमंग उत्साह रहेगा। जैसे ही बुद्धि से ज्ञान गया तो उमंग उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से ज्ञान निकलते ही फिर और बातें आ जाती है, इसको इसको देखना चालू हो जाता है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा होता है, वहां पर भी वैसा होता है, ये भी ऐसा करते इतने समय से फिर भी ऐसा करते, ये सब उसमें दिखाई देने लगता है। तो जितना बुद्धि ज्ञान में लगी रहेगी तो ये सब बातें नहीं है, और क्या करें उमंग उत्साह के लिए।
16 मई बाबा ने बोला है कि खुद ये समझो कि सदा नंबर वन पुरुषार्थी बन रहे हैं, बने नहीं,
बन रहे हैं,
बन रहे हैं, ये अंडरलाइन किया।
और क्या करें,
कुछ रोचक तरीके से नई रुचि पर
नए रीति से देखना एक ही पॉइंट को, जैसे इन्होंने देखा ना साइंस के रीति से देखा मुरली को, कि उसने फ्लाइट के साथ में सब कंपेयर किया। ये एक नया दृष्टिकोण है एक ही चीज को देखने का, हर व्यक्ति एक ही चीज को अलग अलग रीति से देखता है। तो हम भी कभी ये सोचे कि मैं इंजीनियर हूं तो अभी कैसे देखूंगा इस मुरली को, अगर कोई डॉक्टर है तो वो कैसे देखता है इस मुरली को, अगर कोई एक अनपढ़ माता है वो इस मुरली को पढ़े तो उसकी क्या विचार, क्या क्या सोच सकती है वो। हर व्यक्ति एक ही चीज को, क्योंकि ये जो महावाक्य है इतने मतलब बेहद के है कि हर व्यक्ति अलग अलग रीति से उसके ऊपर ये कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। हाँ, तो वो उस रीति से उसको देखना है कि ये सामाजिक रीति से इसका क्या अर्थ है, वैयक्तिक रूप से इसका क्या अर्थ है, राष्ट्र की रीति से इसका क्या अर्थ है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसी मुरली का नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, समाज के लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, मेंटल बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, अलग 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 रीति से। तो ये हमारे चिंतन को व्यापक बनाता है, इसमें बहुत मेहनत है, माइंड ब्लॉक हो सकता है कुछ देर के लिए ज्यादा सोचने गए तो ऐसे लगता है बस अभी छोड़ो, भारी हो जाता है माथा। तो माथा भारी न हो उसके लिए हमारा उतना अध्ययन होना चाहिए। केवल मुरली एक रस नहीं है, केवल उसमें डूबना भी है, उससे फायदा भी लेना है, उससे अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। अपने हम जो मसल्स होती है ना, ये जो मसल्स है अगर एक्सरसाइज ना करो तो वो ढीली हो जाती है, जो रोज एक्सरसाइज करता है उसकी मसल्स मजबूत रहती है। तो ये माइंड जो है ना उसको पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, जिसमें बिल्कुल तकलीफ ना हो, ऐसा मार्ग चाहिए उसको, जिसमें बिल्कुल अगर याद रखने बोलो तो एकदम भारी हो जाता है। मतलब उसको बोलो ये इतना चीज है 10 पॉइंट याद रखे आना तो एकदम ही भारी हो जाता है। अगर खोलो बोलो पढ़ के आओ और पढ़ के सुनाओ तो ये ठीक लगता है, पर याद रखने को बोलो तो एकदम भारी हो जाता है, क्योंकि माइंड क्या करता है उसको कम से कम तकलीफ चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, परंतु ये मार्ग में पहले तकलीफ उठानी पड़ेगी। साइकिल अगर चलाना सीखना है तो पहले बहुत गिरना पड़ता है, मुश्किल होती है, पर एक बार सीख गया तो फिर गाना गाते गाते चलाता है व्यक्ति साइकिल। तो ये मार्ग भी ऐसा ही है। तो ज्ञान का निरंतर अध्ययन तो उमंग उत्साह रहेगा, योग हमारा चार्ट बढ़ता जाए तो उमंग उत्साह रहेगा, और सेवाएं, सेवाएं भी हर प्रकार की सेवाएं, स्थूल सेवा भी करनी है तो सूक्ष्म सेवा भी करनी है, यज्ञ सेवा भी करनी है, ज्ञान सुनाने की सेवा भी करनी है, ज्ञानियों को भी उड़ाने की सेवा करनी है, हर प्रकार की सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि जो सेवाएं हम कर रहे हैं बस वही सब कुछ है, वो तो जैसे मुझे तो मतलब एक मेरा ही ऐसा अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पर बहुत बोझ है क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ऐसा मुझे पर्सनल एक एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि बस बैठो और घूमो, कर क्या रहे। कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी जाओ थोड़ा किचन में कुछ तो करना चाहिए कुछ तो करो, नहीं तो मुझे लगता है तो बहुत बोझ है, क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बैठे हैं इधर उधर घूम रहे हैं, बस वो जो कार्य हो रहा है वो आप ही हो रहा है, जो ठीक हो रहा है, जो कुछ जो जिसका जो है वो आप ही हो रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमें कुछ करना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है ऐसे कि आज यहाँ जाके ये करूँ, वहां जाके वो करूँ, ये जाके ऐसे करूँ, थोड़ा सब्जी काटू, ये कर दू, कुछ तो करना चाहिए ना, नहीं तो कितना बोझ है, बैठ रहे और खा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे, वो तो आप ही ठीक होता है, कोई किसको ठीक नहीं करता है, वो हिसाब किताब के अनुसार सब आप ही ठीक होते, कोई किसी को ठीक करने वाला नहीं है। तो वो तो ये जो एक भाव मेरे अंदर बना रहता है ना, तो ये उमंग उत्साह को ऊपर रखता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कुछ तो करूं, लोग कितना कुछ कर कुछ करते हैं। यहां देखता हूं जब रोज शाम को लोग समझाते हुए, तो बहुत जैसे ऐसे लगता है कितना भाग्य बना रहे इन माताओं को देखता हो तो लगता है इतना अच्छा लगता है। वो नहीं बेहद की सेवा है, तो हमको निरंतर ये लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना है, कुछ कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे और कुछ करना है, और कुछ करना है, ये तो कर, ऐसे नहीं कि बस इसमें संतुष्ट हो गए। पुरुषार्थ में कभी भी संतुष्ट नहीं होना है, वो डिवाइन डिस्कंटेंट, दैवी असंतोष हमेशा बना रहे, दैवी असंतोष नया टर्म है डिवाइन, वो तो है, वो तो कर रहे ही, वो तो बहुत है, पर हमको वहां ही नहीं रुकना है, वो और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि अध्यात्म मार्ग ऐसा है कि उसमें थोड़े से अनुभव हो गए कि रुक गए, जैसे किसी को कहा कि इस मार्ग से जाओ तो तुमको दो लोगों को कहा, नहीं चार पांच लोगों को कहा कि सोने हीरे की खान मिलेगी, निकले दोनों तीन चार लोग, तो सबसे पहले देखा कि लोहे की खान है, अभी एक ने सोचा कि क्यों ना यही रुक जाओ और लोहा ले लो, पता नहीं वो मिलेगी कि नहीं, हीरे ये मिलेंगे इससे कुछ तो ले लेंगे, तो वो वहीं रुक गया। फिर थोड़ा दूसरा आगे बढ़ा तो चांदी की खान आ गई, एक वहीं रुक गया, उसको लगा कि पता नहीं वो हीरे मिले नहीं तो धोखा हो गया, तो क्यों कुछ ना चांदी ले ले, आगे गया तो एक सोने के वहां रुक गया, एक ही था जो अंत तक हीरे तक गया। तो ये आध्यात्मिक मार्ग भी ऐसा है कि हमको लगता है हमने थोड़ी बहुत सेवा कर ली, थोड़े बहुत अशरीरीपन के अनुभव हो गए, थोड़ा बहुत हमारा ज्ञान बढ़ गया, तो बस यही रुक गए, वो सोने की खान में, उसको पता ही नहीं आ रहा अभी और अनुभव बाकी है, थोड़ा सा अनुभव हो गया। ये मार्ग में ऐसा है कि बाबा ने कहा है कि अपने अनुभव सुनाओ, पर कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि हमेशा गुप्त रखने होते हैं। हमको थोड़ा सा अशरीरीपन का अनुभव हो गया कि तुरंत हमने 10 लोगों को सुना दिया, आज मुझे बहुत अच्छा योग लगा, आज मेरा बहुत अच्छा योग लगा, बस यही पर रुक गए। और फिर शाम में कुछ गड़बड़ हुई दिन में, तो गया वो योग का अनुभव भी गया और सब गया। अरे इतना छोटा मोटा जो अनुभव हो रहा है, या कोई वो किसी को आत्मा दिख गई साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, स्वप्न में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दिख गया, तो बाप रे बाप, इतनी खुशी उतनी खुशी, और दिनचर्या तो वैसे ही रह गई। पर फिर तो छोटे मोटे अनुभव में रुक नहीं जाना है, जैसे वो चांदी, वो लोहा चांदी में रुकना है, हमको तो बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे।
कितना आगे?
बेहद के आगे ही आगे बढ़ना है, हमें पंछी है, हम इतना आगे बढ़ना है, इतना आगे बढ़ना है, पंछी अपनी राह हमें खुद बनानी है। भले बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा जो पथ पर चला है उसी पर चलो, परंतु पक्षी जो होता है ना, वो जब चलता है उसको पता थोड़ी होता है आसमान में रास्ता कहाँ है, वो जाता है और फिर राह बनती है, जाने के बाद ही राह बनती है, पहले रास्ता नहीं होता है, हम जाएंगे तो राह बनेगी, तो हमको और कौन किस राह पे जाना है वो पता नहीं है, ये अज्ञात राह है। लक्ष्य पता है जरूर, मार्ग बता दिया, फिर भी चलना तो अकेले ही है, हम किसी को लेकर, ये मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग पर दो लोग ही नहीं चल सकते, अकेले को ही चलना है इसमें। वो क्या कहते हैं, प्रेम राह संकीरी, जहां पर दो ना चले, क्या है ऐसा कुछ है ना, कबीर ने कहा होगा कि इस मार्ग पर दो लोग एक साथ नहीं चल सकते, ये मार्ग ऐसा है कि एक को ही चलना, नहीं तो कोई लगेगा ये बहुत अच्छा है, हम दोनों मिलके चलेंगे पवित्र प्रेम इसलिए हम दोनों साथ में चलेंगे, हम दोनों साथ योग करेंगे, हम दोनों साथ में सेवा करेंगे, ऐसा नहीं होता है, अकेला ही चलना है।
उसके पास बोझ हुआ तो हम भी पीछे,
वो जो है ना पैर में रस्सी बांधते दो लोग और भागते हो, ऐसा है। ये भाई ने एक प्रश्न पूछा है कि ज्वालामुखी योग की विधि क्या है जिससे कि संस्कार परिवर्तन हो। ज्वालामुखी योग अर्थात ही लंबा समय तक परम धाम में टिकना, इसके लिए हमने बहुत बार कहा हुआ है कि अपने आप को ज्योति स्वरूप आत्मा समझकर परम धाम में स्थित होना और उसकी किरणों के नीचे रहना। उसमें हम ये प्रयोग कर सकते हैं कि मैं आत्मा, अगर मुझ में ये एक संस्कार है जो 10 साल से चल रहा है और बहुत कड़ा है, वो संस्कार है ऊपर से पवित्रता की किरणें आ रही है। अगर अपवित्रता का संस्कार है, अपवित्रता से संबंधित वो संस्कार है, तो पवित्रता की किरणें आ रही है और उस पर पड़ रही है। निरंतर अशरीरीपन का अनुभव परम धाम में, माने अमृत वेला योग और शाम का योग, ये दो समय हो सकता है इस तरह का योग, सारे दिन भर नहीं हो सकता है ये योग, जो जिसको ज्वालामुखी योग कहते हैं या बीज रूप स्थिति जो है, बहुत शक्तिशाली स्टेज है वो, कि जिसमें हम सबसे पहले तो मैं आत्मा इस देह में हूं, फिर इस देह से निकलकर मैं सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में गई, ये देह तत्व तत्व में समा गए, सूक्ष्म वतन में रहकर सूक्ष्म शरीर को भी अब छोड़ दिया और मैं आत्मा गई निराकारी देश में, और वहां पर फिर लंबा लंबा समय बिताना कि मैं कहां हूं, मैं निराकारी दुनिया में हूं, सबको निराकारी देखना, मैं निर्विकारी दुनिया में हूं, मैं ब्रह्म लोक में हूं, ब्रह्म को देखना, मैं शांति धाम में हूं, यहाँ की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है, मैं मुक्ति धाम में हूं, मैं निर्वाण में हूं, संपूर्ण सन्नाटा यहाँ है, उसको बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना, बहुत ज्यादा बढ़ाते जाना, फिर जो सात स्वरूप है वो शांति का सागर है, उस शांति के सागर को टच किया और उस शांति के सागर में डूबती जा रही हूं। तो इस तरह से लंबा समय बीज रूप स्थिति में रहना, लंबा समय परम धाम की स्टेज पर रहना, लंबा समय अशरीरीपन का अनुभव करना, इससे धीरे धीरे और वो संस्कार को वहां इमर्ज करना कि ये संस्कार मुझ में है और वो अभी आग जैसे आ रही है और वो आग में वो संस्कार भस्म हो रहा है, जल रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इसी अभ्यास को और अच्छा कल और कोई वॉलेंटरी भाइयों में सुमंत भाई सुनाई कल नहीं है और हाँ तो कल सुनेंगे थर्ड ग्रुप ठीक फंक्शन क्या नाम है
श्रीनिवास
फंक्शन।